दध्यं दध्यं गाथर्वणस्तनु परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सम्मयं जहौ जपाक्षासु मनो बुद्धिः तत्त्वदृढ्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुधे गतम् अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः।
कर रहे थे देवगण दध्यंग मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं और दध्यंग मुनि उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, देवता भी बातें किए। अंत में दध्यंग मुनि ने कहा कि आप लोगों के लिए मैं इस देह को त्याग दूंगा। इसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी, किस प्रकार उन्होंने देह त्याग किया यहां से वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुकल वाच, ध्यान रखना चाहिए कि यह कथा गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित के लिए, और वहां पर हजारों हजारों अन्य ऋषि मुनि थे। महाराज परीक्षित को भी देह त्यागना है, तो इस प्रकार की बातें महाराज परीक्षित के लिए बहुत सुंदर हो रही थी। दध्यंग मुनि ने देह त्याग किया एवं कृतव्यवसी का व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय, कृतम व्यवसितम जेन सह, इस प्रकार से दधीची मुनि ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया कि मेरा शरीर एक दिन मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं इसको आज ही छोड़ रहा हूं, और यदि आप लोगों का हित होता है तो अवश्य ले लीजिए इस शरीर को। उन्होंने परोपकार को ही, दूसरों के दुख को दूर करने को, सुखी करने को ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ माना। यह उनका व्यवसाय था, यही निर्णय था। ऐसा कहकर के वे तनु जहौ शरीर त्याग दिए। कैसे त्यागे? पहले उनकी विशेषता बताई जा रही है, एक तो वे बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र थे, अथर्वण, अथर्वण का अर्थ है अथर्वा के पुत्र। अथर्वा एक मुनि है, बहुत ही प्रसिद्ध है वेदों में, उपनिषदों में, तो उनके एक पुत्र थे, तो पैतृक कंसेशन प्राप्त था भगवान के प्रति, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनके लिए आश्चर्य नहीं था क्योंकि अथर्वा के पुत्र थे। भगवती ब्रह्मणी परे आत्मानं सन्नयं तनु जहौ, अपने को भगवान के पास ले जाकर के अपना शरीर छोड़ दिए। आत्मानं सन्नयं, अपने को ले गए। बहुत सुंदर बात का वर्णन किया जा रहा है कि आत्मा में और देह में बहुत अंतर है। एक दिन सबका देह छूट जाता है और वह जीव जाता है कहीं दूसरे स्थान पर जहां भी जाए, लेकिन प्रयास करके श्री दध्यंग मुनि अपने को भगवान के पास ले गए। कहां भगवान थे जहां वे ले गए अपने को? ध्यान में, गाढ़ आवेश में, ध्यान में उन्होंने अपने को देखा कि मैं भगवान के साथ हूं, भगवान की लीला में हूं। यह कैसे करने में समर्थ हुए? क्योंकि परमम योगम आस्थित, परम उपाय में अस्थित थे वे पहले से। उस समय केवल नहीं, योग का अर्थ होता है उपाय, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग आदि ये योग है। योग का अर्थ उपाय, जिस साधन से हम अपने को संसार से मुक्त करके और भगवान में रखते हैं तो इसको योग कहा गया है। परमम योगम का अर्थ भक्ति योग, भक्ति योग से शीघ्र भगवान में मन आविष्ट हो जाता है। बहुत काल से इन्होंने नारायण कवच का अभ्यास किया था, भगवान का जप किया था, ध्यान किया था, पूजन किया था बारंबार। इसको कहते हैं परमम योगम आस्थित। आ का अर्थ है सम्यक और स्थित का अर्थ होता है स्थित, सिचुएटेड। आ का अर्थ सम्यक, पूरा परम योग में स्थित है। शास्त्र कहता है परम योग का अर्थ है इंद्रियों को भगवान के विषय में लगा देना, यही परम योग। सोई मनः कृष्ण पदारविंद, मन को भगवान के चिंतन में, वाणी को उनके गुणानुवाद में, कर्णेन्द्रिय को भगवान की कथा सुनने में, हाथ को सेवा में, पैर को भगवान के तीर्थ में घुमाने में, परिक्रमा आदि में, नासिका को उनके चरणों पर चढ़ाए गए पुष्प को सूंघने में, और रसनेन्द्रिय को जिह्वा को उनके भगवान के अर्पित प्रसाद में लगाने में, और त्वग इंद्रिय को भगवान के भक्तों के चरण को स्पर्श करने में लगाना चाहिए। इसको परम योग कहा गया। तो जीवन के शुरू से ही दध्यन मुनि परम योग में स्थित है, इसलिए जीवन के अंत में भगवान में चित्त को रख देना, अपने आप को रख देना उनके लिए बिल्कुल सुगम आसान। यदि पहले से अभ्यास नहीं हुआ होता तो जीवन के अंत में भगवान में मन इस तरह से लगा देना संभव नहीं। कैसे लगाए और बता रहे, जताक्षासु मनोबुद्धि, चार चीजों को जत कंट्रोल्ड किए थे पहले से और इसमें विशेष। जत अक्ष, जत असु, जत मन, जत बुद्धि। जत का अर्थ होता है नियत, कंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड का अर्थ यह होता है कि विषयों में भगवान के अतिरिक्त अन्य विषयों में मन को न जाने देना, इस विषय में प्रवृत्त है। जताक्ष, अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां अथवा आंख, तेरे आंखों को बंद कर लिए और इंद्रियों की वृत्तियों को शांत कर लिए सब तरह से। कान कहीं शब्द नहीं सुन रहा था, आंख कुछ भी नहीं देख रही थी, नासिका गंध नहीं ले रही थी, त्वक स्पर्श का अनुभव नहीं कर रहा था संसारी, और सारे इंद्रियों की वृत्ति भगवान में चली गई। वहां दधीचि मुनि यही देख रहे थे कि मैं भगवान को टच कर रहा हूं, भगवान को सुन रहा हूं, भगवान को देख रहा हूं, भगवान की सेवा में हूं, और इधर इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी स्फुरणा नहीं हो रही थी, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। इसको कहते हैं जताक्षा से मनोबुद्धि, मन में भगवान भरे थे, बुद्धि में और इंद्रियों में और प्राण में। तत्व दृक, दृक का अर्थ दृष्टि, भीतरी आंखें देख रहे थे केवल तत्व को। तत्व ध्वस्त बंधन, भगवान से इनको इतना आनंद की प्राप्ति हो रही थी भगवान के रूप गुणादि का अनुभव करके, अन्य समस्त वासनाएं इनकी समाप्त हो गई थी। क्या क्या वासना जीव में होती है, जीने की, जी करके खाने पीने, स्वर्ग घूमने, देवता बनने की, अनेक प्रकार की कामनाएं जीव को होती हैं। पर दधीचि मुनि के मन में न तो मुक्ति की वासना थी न भुक्ति की वासना थी। वासना को, इच्छाओं को ही बंधन कहा गया है इस संसार में। जब तक इच्छाएं हैं तब तक यही रहना पड़ेगा, बंधन लगा हुआ है जीव का। पर दध्यन मुनि ध्वस्त बंधन, ध्वस्तानी बंधनानी जस्य स, इनके सारे बंधन ध्वस्त हो चुके। तत्व दृग होने के कारण जब तक भगवान के रूप आदि का अनुभव नहीं होगा जीव को, तब तक संसार के रूप रस को भोगने की लालसा जाएगी नहीं, ये संभव नहीं है। इसीलिए श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी दध्यन मुनि के लिए कहते तत्व दृग, चूंकि भगवान के रूप का अनुभव कर रहे थे, शब्द का, रस का, गंध का, इसीलिए भुक्ति और मुक्ति तक की इनकी वासना समाप्त हो चुकी थी, ध्वस्त बंधन परम जोर में अस्थित थे, अपने को भगवान के लीला में ले गए पर ब्रह्म भगवान के पास, और इस तरह से तनु जहल शरीर छोड़ दिए। और इतना तल्लीन थे भगवान की लीला में, इतना तल्लीन थे कि न देहम बुद्धे गतम, गतम देहम न बुद्धे, कब देह आत्मा से गिर गया इसको जाने भी नहीं। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया गया है, योगी लोग इस तरह से शरीर छोड़ते हैं, उनको पता नहीं लगता है, जैसे मदिरा मदांध व्यक्ति कभी कभी यह नहीं जान पाता है कि उसकी लुंगी खुलकर गिर गई है, वो ये नहीं जान पाता, या दुपट्टा गिर गया है, चादर गिर गया है, देखा है आप लोगों ने शराब पिया हुआ आदमी इस तरह से, हमने तो कई बार देखा। भागवत में ये सब दृष्टांत दिए गए, मदिरा मदान है, मदिरा पीने से बुद्धि भ्रंश हो जाती है और उसको पता नहीं लगता है मैं कहां हूं, क्या बोल रहा हूं, तो जो भी वस्त्र रहता है फ्री वो गिर जाता है, कुर्ता तो नहीं गिर सकता क्योंकि वो तो फंसा रहता है लेकिन चादर या कभी कभी टोपी सब गिर गया और वक्ता है। तो जैसे उस मदिरा मदान व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि उसका वस्त्र गिर गया है, उसी तरह से उच्च कोटि के योगियों को यह अनुभव नहीं होता है कि उनका शरीर गिर चुका है। अरे भगवान के रस से मदांध रहते हैं, केवल मदांधता की दृष्टि से उपमा दी गई, एक की स्थिति तो बहुत नीचे है और एक की बहुत हायर है, परंतु देह को भूलने के विषय में ऐसा ही है। तो दध्यंग मुनि भी क्या नहीं जान पाए कि उनका देह गिर गया है, इस तरह से देह छूट गया, बल्कि दध्यंग मुनि को बहुत आनंद मिल रहा था कि अब ये देह छोड़ने जा रहा है। जिस तरह से हम लोग शाम को सोने जाते हैं, बेड लगाया जाता है, सोते हैं आराम से, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना सुख से सो जाए, सोने का मतलब कि हम देह भूल जाए, देह की स्मृति न रहे, जिस तरह हम सोना चाहते हैं सुख के साथ, उसी तरह से भक्त वास्तव में भगवान के पास जाना चाहता है, उस देह को छोड़ना चाहता है। भागवत में एक और दृष्टांत दिया गया है, जैसे सांप का एक केंचुल होता है, केंचुल का सांप के शरीर पर एक प्लास्टिक जैसा सर्पाकार कवर हो जाता है, तो केंचुल कहते हैं सांप का, तो वह एक दिन छूट जाता है और उसको छोड़ने के लिए सांप व्याकुल रहता है, तो किसी दर्रे में या कहीं पर फंसा करके उसको छोड़ता है, इस तरह से शरीर एक दिन छूट जाता है, आनंद आता है शरीर छोड़ने में, शरीर एक बहुत बड़ा बंधन है, पर विषयी आदमी के लिए तो बाप रे बाप, मैं ही देह हूं, देह न जाए न हो जाए, अरे ठंडा लगना यदि बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो देह जाने की बात तो बहुत। दधीची मुनि के देह त्याग की बात हो रही है, न देहम बुद्धे गतम, देह कब चला गया अभी नहीं जाने, चले न देहम बुद्धे गतम, देह गतम न बुद्धे, देह कैसे चला गया नहीं जाने, जिसको देह की स्मृति नहीं है। हरि बोल हरि बोल, तो पीछे आना ऊपर बैठना नहीं हो सकता, नीचे 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 बैठाइए, जगह दीजिए, आगे बैठने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो आगे आते हैं, ये कथा का नियम है, समझे, ये बात मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, चौधरी शब्द समझ लेना चाहिए, आगे बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो आगे आते हैं, पीछे आने वालों को आगे बैठने का अधिकार नहीं, नियम के विरुद्ध माना गया है। कोई भी व्यक्ति हो जो पीछे आता है उसको पीछे बैठना चाहिए। तो दग्धन मुनि शरीर को छोड़े इसके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न देहम बुद्धे गतम, गतम देहम न बुद्ध। यह बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। एक दिन हम सबको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़े अपनी खुशी से वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोड़े या न छोड़े माया तो छुड़ाएगी, चाहे अस्पताल में गिरा करके या जहां तहां इधर उधर बहुत दुर्दशा करके माया छुड़ाते हैं शरीर। तो अच्छा है कि अपनी इच्छा से इसको छोड़ दिए। तो अभी जो शरीर का ज्यादा केयर न करके भगवान में मन लगाए रखते हैं, तो ये लोग बहुत आसानी से शरीर छोड़ देंगे। उनको भी पता नहीं लगेगा कब शरीर छूट गया और भगवान की लीला में चले जाएंगे। तो दध्यन मुनि इस तरह से शरीर छोड़ दिए और नहीं जाने। अथेन्द्रो वज्रम उद्यम्य निर्मितम विश्वकर्मणा मुनि शुक्ति भी उत्सिक्त भगवत तेज सान्वित। इस प्रकार जब दध्यन मुनि शरीर छोड़ दिए तो उनके शरीर को एक गाय ने चाट करके चमड़े को अलग कर दिया पूरा, ऐसा वर्णन है शास्त्र महाभारत में। पूरा शरीर कवर हटा दिया, चमड़ा चला गया। तब उनके अस्थि को ले गए देवता लोग अपने स्थान पर। विश्वकर्मा जी उससे वज्र बनाए। विश्वकर्मा जी साक्षात इंद्र के भाई हैं, द्वादश आदित्यों में वो भी एक है, विश्वकर्मा और वरुण इत्यादि। तो इस तरह से वज्र का निर्माण हो गया। तो भगवान इंद्र समस्त देवताओं को सूचना दी कि अब वृत्रासुर का वध करना है, सब लोग जुट जाइए। नया नया अस्त्र शस्त्र बनाया गया था। तो पुराने सारे अस्त्र शस्त्र तो वृत्रासुर जी खा गए थे, सब खा गए, नया बना। तो बहुत कम अस्त्र शस्त्र थे देवताओं के पास, बहुत कम, लेकिन वज्र था, इस बल से सब जुट गए। अथ इंद्र वज्रम उद्यम्य उत्यम्य ले करके हाथ में, और उस समय उत्सिक्त थे। उत्सिक्त का अर्थ होता है उनका उत्साह बहुत बढ़ गया था, वो अभिमान में आ गए थे, गर्व में, कि अब मैं देख लूंगा वृत्रासुर को। क्योंकि मुनि शुक्ति भी उत्सिक्त हो, मुनि की शुक्ति से, शुक्ति का अर्थ हड्डी होता है, दधीची मुनि की हड्डी में बहुत बड़ा बल था, और भगवत तेज सान्वित और भगवान के तेज से युक्त थे इंद्रजी इंद्रदेव। तो दो दो का, भगवान का और भगवान के भक्त का, दोनों का आशीर्वाद देवराज इंद्र को प्राप्त था, इसलिए वे बिल्कुल निर्भय थे। जिस वृत्रासुर के भय से सारे देवता भागे थे, और उसी वृत्रासुर के सामने ये युद्ध के लिए तैयार होकर के चले। पता लग गया कि वृत्रासुर यहां है, तो इधर से खबर भेजा गया कि तुम लोग नर्मदा नदी के किनारे आ जाओ और हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो असुर लोग तो हंस रहे थे कि क्या हो गया देवताओं को, आज मरना चाहते हैं क्या। ये पता लगा कि दधीची मुनि की अस्थि से अस्त्र बना है, हड्डी से अस्त्र बना है, ईश्वर देवताओं को भरोसा है। वो लोग हंस रहे थे मृत्रासुर आदि, लेकिन इंद्र बहुत गर्व में थे, उत्सिक्त, बहुत उत्साह में, भगवान का तेज था। देखने में अस्त्र छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत थी। आयुधा नाम हम वज्र, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं आयुधों में वज्र हूं। सुदर्शन चक्र के बाद यही अस्त्र है, सबसे बड़ा घातक अमोह। तो ऐसे वज्र को लेकर के इंद्र तैयार हुए। देखिए समय बदल गया, देवता कितनी बुरी तरह से हराए गए थे, मारे गए थे, लेकिन आज भगवान का बल पा करके सब लड़ने के लिए तैयार। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी श्रेष्ठ मुनि का, साधु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान की कृपा उस पर होती है, तो वही वास्तव में विजयी होता है सब जगह। यह सिद्धांत देवराज इंद्र निश्चित विजय प्राप्त करेंगे, वृत्रासुर का वध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवत तेज साथ में, तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान का तेज इनके साथ था। जहां भगवान है वहीं विजय होती है। 10 दिन महाभारत का युद्ध बीत चुका था, भीष्म पितामह गिराए गए थे। उस दिन संजय कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज से, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नित्य मतिर मम। हे महाराज, जहां गांडीवधारी अर्जुन है और जहां जोगेश्वर श्री कृष्ण है, वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, सफलता है, यह धन है, वैभव है। तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम, ये मेरी मति है। मेरी मति का अर्थ मेरी मान्यता है। संजय भी बहुत बड़े व्यक्ति थे। वे कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज से कि महाराज, आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में जुट करके क्या किए, तो जो हुआ रिजल्ट तो आप सुन ही लिए कि भीष्म गिर गए, आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे, विजय पांडवों की होगी, क्योंकि उस पक्ष में अर्जुन है और कृष्ण है। ये समझ लीजिए, धृतराष्ट्र से स्वयं कह रहे हैं कि आपके पक्ष की पराजय निश्चित है। जहां कृष्ण है वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं भूति है। भूति का अर्थ होता है विभूति, धन, वैभव, पद और ध्रुवा नीति। वहीं पर धर्म है, वहीं नैतिकता है। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं धर्म रहता है। पांडवों के पक्ष में धर्म है क्योंकि भगवान उस पक्ष में है। यह मेरी मति है, मेरी मान्यता है, आप अब भी युद्ध को रोक दीजिए। संजय के कहने का ऐसे ही अर्थ है। लेकिन वो अंधा धृतराष्ट्र यही पूछता था, आगे कहो क्या हुआ है, आगे कहो क्या हुआ है। और कभी कभी बीच में कहते थे, मैं जानता हूं कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, सब मारे जाएंगे, लेकिन जो भी हो आगे कहो क्या हुआ। यही कहा करते थे। बहुत बड़ी पराजय के बाद इंद्र देवता आज विजय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ दधीची मुनि की तपस्या है और भगवान विष्णु का तेज। कितना बड़ा साहस का कार्य है, लेकिन भगवान साथ में है और एक भक्त का आशीर्वाद है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। चल इस तरह से यदि किसी भी व्यक्ति को कामना हो कि मुझे श्री मिले, विजय भूति और ध्रुवा नीति आदि, तो उसे चाहिए कि वो भगवान की शरण ले। ये नहीं देखना चाहिए कि अरे तो छोटा सा अस्त्र है, वो वज्र छोटा नहीं था, भगवान का तेज उसमें था और एक भक्त की तपस्या उसमें थी। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं बड़े बड़े साम्राज्य भी छोटा व्यक्ति उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे पढ़ते हैं चंद्र, ये थे ब्राह्मण चाणक्य पंडित, एक ब्राह्मण महानंद के राज्य को समाप्त कर दिया, चंद्रगुप्त को विजयी कराया अपनी बुद्धि से। उस तपस्या होती है, तेज होता है। देवराज इंद्र जिस पक्ष में, देवराज इंद्र की विजय निश्चित। एक प्रश्न उठता है कि क्या वृत्रासुर जी के साथ भगवान नहीं है तो उनकी पराजय होगी। वास्तव में वृत्रासुर तो भक्ति में बहुत उन्नत थे। इंद्रदेव भी भगवान के भक्त हैं और इसके साथ ही साथ भगवान की विभूति भी है। देवताओं में मैं इंद्र हूं, भगवान ने कहा है। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की विभूति है इंद्र देव, और भगवान ने इनको नियुक्त किया है जगत की व्यवस्था देखने के लिए, सब लोग सुख से जिए भजन करें, इसके लिए इंद्र को नियुक्त किया है भगवान ने। ये तो साक्षात भगवान की के प्रतिनिधि हैं, विभूति हैं, इनके पक्ष में है भगवान है तो स्वाभाविक, परंतु वास्तव में भगवान वृत्रासुर के भी पक्ष में। पहले ही भगवान ने इंद्र से कहा था कि वृत्रासुर को मारने की याचना करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं, परंतु वृत्रासुर स्वयं ही शरीर छोड़ना चाहते थे, उनकी इच्छा थी। इसका कारण यह था कि वृत्रासुर वास्तव में एक महाभागवत पुरुष थे, चित्रकेतु महाराज के रूप में, लेकिन माता पार्वती के साप से इनके जीवन में यह आसुर भाव आगंतुक रूप से आया था। वास्तव में वे परम कृष्ण प्रेमी भक्त थे महाभागवत, लेकिन माता पार्वती रुष्ट होकर के साप दे दी थी इनको असुर होने का, इसलिए असुर का भाव आ गया था थोड़े देर के लिए और ऐसा शरीर प्राप्त था। तो वास्तव में तो भक्त थे, जैसे किसी व्यक्ति को कभी कभी भूत लग जाता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति जो भी बोलता है, खाता है, चलता है, वह भूत से अभिष्ट रहता है, लेकिन जिस दिन उसका भूत उतर जाता है तो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक से समझने लगता है मैं इस परिवार का हूं, मेरा ये काम है, मेरा ये है वो। तो इस तरह से सांप जो है वास्तव में एक महाभूत की तरह है। कोई श्रेष्ठ पुरुष यदि क्रुद्ध होकर के किसी को साथ दे देता है तो उस व्यक्ति का सौभाग्य तुरंत नष्ट हो जाता है, ढक जाता है पहले का समय। चित्रकेतु इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त की भगवान की डायरेक्ट सेवा का सौभाग्य उनको मिला था। ऐसा भागवत में वर्णन है कि जिस समय भगवान शंकरेश्वर देव के पास वे पहुंचे तो भगवान के चरण कमल को पकड़ करके वे रो रहे थे आनंद में, तो भगवान के चरण कमल की चौकी भीग गई इनके आंसू से, इतना रोमांच और अश्रु था। भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे थे, नारद जी की कृपा से, अंगिरा जी की कृपा से 7 दिन में भगवान को प्राप्त किए उसको, परंतु एक बार ये कुछ स्त्रियों के साथ विमान से जा रहे थे। यह इनकी विशेषता थी कि चित्रकेतु महाराज के पास स्त्रियां थी, लेकिन सभी केवल भगवान के गुणगान में रत रहती थी, स्वप्न में भी काम विकार नहीं था महाराज चित्रकेतु में, भगवत कीर्तन होता था, गीत होता था, इसी का स्वादन करते हुए घूम रहे थे। तो एक बार इनके मन में इच्छा है कि कैलाश चले, भगवान शिव का सत्संग करेंगे, उनसे कथा सुनेंगे। गए तो उस समय पार्वती जी भगवान शिव के जांघ पर बैठी हुई थी और भगवान शिव कथा कह रहे थे, तो पत्नी को बगल में बैठा कर कथा कहते तो भी ठीक था, जांघ पर बैठा करके कथा कहते, इसलिए भगवान शिव के आचरण को नहीं देखना चाहिए, आचरण देखने वाले व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा ये क्या तमाशा है। जो अपनी पत्नी को इतना मानते हैं कि कथा के समय भी अलग नहीं किए थे, जो गलवाही दे करके जांघ पर बैठा करके और इधर भगवान कृष्ण की कथा कर, ऐसा दूसरा नहीं कर सकता है वास्तव में। जिनकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव जलकर राख हो गया, वो शिव जी कोई काम के वश में नहीं, यह भगवत्ता है उनकी। वो दिखाते हैं कि देखो स्त्री जांघ पर बैठी है, कुछ भी लेती है, उनका मन भगवान में लगा हुआ था। चित्रकेतु जी जान गए भगवान शिव की महिमा को, कितने महान, इन पर काम का असर नहीं, लेकिन सख्य भाव से भगवान शिव को अपना मित्र जैसा मान करके व्यंग करने लगे, सीधा व्यंग किए, अरे साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी से मिलता है तो एकांत में मिलता है, और ये देखिए ये जटाधारी है ये जटाधारी जी हैं और भस्म रमाए हैं, वस्त्र ठीक से नहीं पहनते हैं, तपस्वियों में अग्रगण्य हैं, ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, देखिए स्त्री को ऐसे बैठा है, लगता है कि उनको कोई लज्जा नहीं। इस तरह से कह रहे थे, तो भगवान से परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। भगवान शिव भी परम श्रेष्ठ कोटि के वैष्णव हैं और ये भी वैष्णव, तो इस कारण से एक मजाक चल रहा है। प्रकारांतर से भगवान शिव की महिमा गा रहे हैं, तो शिव जी तो समझ गए, लेकिन कुछ दैव का विधान था, भगवान की ऐसी इच्छा थी, माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, यदि शिव जी अटपटांग आचरण करते हैं, चाहे कोई भी विश्व में अटपटांग आचरण करता है, तो भगवान के द्वारा शिव जी आदि को दंड देने के लिए तुम ही नियुक्त हो क्या? जो हम लोग गलत कर रहे हैं, सभा में सट करके बैठे हैं, तो हम लोगों को दंड देने वाला तुम हो क्या? अब तो बात बिल्कुल सीरियस हो गई, गंभीर हो गई। और भगवान शिव अब ये भी नहीं कह सकते थे, अरे चुप रहो, समझने का प्रयास करो, यहां दूसरी बात है। अब वो बोलने लगी, तो बोलने लगी, अब पति का बस नहीं चला, वो नहीं नहीं नहीं, तो आप गलत आचरण कर रहे हैं, सभा में पत्नी को लेकर बैठे हैं, तो यही दंडधर है क्या? आपकी सभा में तो सनत कुमार भी आए हैं, नारद जी आए हैं, ब्रह्मा जी तक आए हैं, आपको किसी ने कहा है कि आप गलत कर रहे हैं? यह क्यों बोला? अब तो स्त्री तो समझी नहीं, ये कौन है बोलने वाला, हम लोगों को टोकने वाला ये कौन है? क्या ब्रह्मा जी के पास बुद्धि नहीं है, सनत कुमार जी को बुद्धि नहीं है, नारद जी को बुद्धि नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोगों को कहे, क्यों नहीं मना किए? ये क्यों मना करता है? असुल कहेंगे तुमको भगवान की सेवा में होने का अभिमान हो गया है, तुम तुरंत आसुरी जोनि में चले जाओ। एक क्षण में क्या से क्या हो गया। और ये चित्रकेतु महाराज के अभिप्राय को, परिहास को नहीं समझ सकते। चित्रकेतु चाहते तो पार्वती जी को भी साप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि भगवान विष्णु की यही इच्छा है। उनके मन में यही आया कि भगवान का यह विधान था, ये होने वाला था, तो वे माता पार्वती के चरणों में गिर गए और कहे कि मां, मैं जानता हूं जो कुछ होने वाला था वही आपके मुख से निकला है, मुझे इसका शोक नहीं है कि मैं असुर योनि में जाऊंगा, परंतु इस बात को मुझे तकलीफ है कि मेरे बातों से आपको दुख लगा, इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। न तो असुर होने का इनको दुख हुआ, न तो दुख भोगने का कुछ भी, ये समझ गए भगवान का यह विधान था, नहीं तो अकस्मात ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार भगवान की सेवा में रहने वाला व्यक्ति इतना उन्नत पद पर और तुरंत असुर योनि में जाए, तो ये समझ गए कि भगवान का विधान। तो सभी सभा के लोग जो थे वे अब थोड़ा डर रहे थे कि पार्वती जी को ये साप न देना चालू करेंगे लेकिन उन्होंने साप नहीं दिया, उल्टे प्रणाम करने लगे और सामने लगे। वहीं पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यही साधु का लक्षण है, सह लेना। चित्रकेतु कम नहीं थे प्रभाव में, भी साप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, सिर से नम्र भाव से माता पार्वती के साप को उन्होंने स्वीकार किया। वही चित्रकेतु महाराज त्वष्टा के यहां यज्ञ में उत्पन्न हुए वृत्रासुर के रूप में। तो मैं यह कह रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति भूत से अविष्ट हो जाता है, वैसे ही माता पार्वती के साप से कुछ देर के लिए आसुर भाव इनमें आ गया था, परंतु वह तो कभी भी उभर सकता था, ये उनका भगवत प्रेम कभी भी उभर सकता था, और वह बिल्कुल युद्ध में उभर गया, इसी में भागवत में वर्णन है। और वही हम लोगों के इस भागवत सप्ताह का मुख्य विषय है, युद्ध में जहां मार काट मची हुई है, जीतने और हारने का कंपटीशन लगा हुआ है, सब कुछ उस युद्ध के मैदान में उनके मन में आ गया कि अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं, छोड़ने के लिए व्याकुल हो गए और इंद्र से प्रार्थना करने लगे, मारिए मारिए वज्र मारिए, मैं जाऊं भगवान के पास, मैं कब तक इस असुर शरीर में रहूंगा, मैं इसमें रहना नहीं चाहता। तो इस तरह से चाहे इंद्र हो या वृत्रासुर, वास्तव में दोनों भगवान के बहुत प्रिय हैं, तो वृत्रासुर तो भक्ति में बहुत अग्रसर, बहुत अग्रसर। इनका मिसाल दिया जाता है, इनका उदाहरण दिया जाता है शुद्ध भक्तों में वृत्रासुर जी का। और इंद्र भी भगवान के परम प्रिय हैं। इंद्र तो भगवान के पुत्र की तरह है, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, इस तरह से भगवान इंद्र का हमेशा मदद करते हैं। कई बार देखा गया है, जैसे एक बार यज्ञ में बाधा देने के कारण पृथ्वी महाराज मारना चाहते थे इंद्र को, वध करना चाहते, तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी आकर के रोके, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, इंद्र भगवान की विभूति है और आप भी भगवान के अवतार, आपके द्वारा योग्य काम नहीं है कि आप इंद्र का वध करें, अब मत कीजिए, यज्ञ रोक दीजिए। तो यज्ञ रोक दिए पृथ्वी महाराज, इंद्र का वध नहीं किया। और इसके बाद भगवान प्रकट हुए तो इंद्र को साथ में लेकर प्रकट हुए, और इंद्र के बिहाफ में भगवान क्षमा मांग रहे थे पृथ्वी महाराज से, इन्होंने आपका यज्ञ भंग किया है, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। ये लगता है कोई पिता अपने पुत्र को लेकर के क्षमा मांगने जा रहा है। तो इंद्र से भगवान का बहुत स्नेह है और इंद्र भगवान के शरणागत भक्त है। कोई भी संकट पड़ता है तो सीधे भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उनके साथ है ही। और वृत्रासुर शरीर छोड़ना चाहते ही हैं, उस शरीर में उनको रहने देना भी ठीक नहीं था, इसलिए उनका वध करा करके उनको अपनी सेवा में लेना ही भगवान चाहते थे। तो वृत्रासुर पर भी कृपा थी भगवान की और इंद्र पर भी कृपा थी। वृत्रासुर के प्रति भगवान कोई कठोर व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो इंद्र के लिए यहां सब दया है, मुनि सुक्ति भी उत्सिक्त हो भगवत तेज सामने का, भगवान के तेज से युक्त थे और चले विजय करने के लिए। बहुत बड़ी शक्ति से युद्ध करना था, वृत्रासुर सामान्य नहीं थे। आप जरा विचार कीजिए, जो सबके अस्त्र शस्त्र को मूली गाजर की तरह खा गया था, उसके सामने वो लड़ते क्या? अब केवल इतना ही बचा था कि सबको पकड़ पकड़ करके वो खा जाए, इसके लिए भागे थे। लेकिन ऐसे विकराल वृत्रासुर के सामने पुनः इंद्र आ गए और सारे देवता जो भागे थे वे आ गए। यह है भगवान का आशीर्वाद। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है वो इस तरह से महान शक्तिशाली हो जाता है। अब कोई भय नहीं था, भगवान ने आश्वासन दिया था कि आप मारेंगे वृत्रासुर को, मत तेजल को ब्रिंग, मेरा तेज आप में जाएगा और आप मारेंगे वृत्रासुर को, डरिएगा मत। इंद्र और देवता लोग कहने लगे थे कि हम नहीं जाएंगे उसके पास, वज्रबल भी जाएगा तो हमको खा जाएगा, हमको मत भेजिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं मारा जाएगा, मैं आश्वासन दे रहा हूं। तो भगवान के वचन प्रमाण है, इसलिए देवता लोग निर्भय चले वृत्रासुर से लड़ने के लिए। देवराज इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर चढ़े थे। मृतो देव गणई सर्वे गजेंद्रो पर शोभत स्तूय मानो मुनि गणई त्रैलोक्यम हर्ष अनिवा। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके इंद्र के साथ थे। मृत सर्व देव सर्वे देव गणई, सभी देवता चल रहे थे। अब तो सबका उत्साह बढ़ा था, कोई भय नहीं था वृत्रासुर से लड़ने में, वो सब चल रहे। गजेंद्रो परी अशोभत, भगवान इंद्र बहुत सुंदर लग रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी लगता है जैसे फोटो खींच रहे हैं। गजेंद्र ऊपरी अशोभत, गजेंद्र के ऊपर बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान ने डायरेक्ट आलिंगन किया था इंद्र का और कहा था कि आप नहीं मारे जाएंगे, आप मारेंगे वृत्रासुर को, देवताओं पर कृपा दृष्टि से देखे थे, इसीलिए सब निर्भय थे। बहुत सुंदर लग रहे थे इंद्र अशोभत, और स्तूय मानव मुनिगण, मुनिगण स्तुति कर रहे थे इंद्रदेव की, उनके बल की, उनके भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। तो भगवान जिसके भक्ति से प्रभावित होकर के परामर्श दिए थे, यह करो ऐसे जाओ ये करो, तो बहुत महान व्यक्ति थे। तो मुनिगण स्तुति कर रहे थे, तो इंद्र हाथी पर शोभा दे रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोगों को हर्षित कर रहे हैं। ईवर शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि अभी तीनों लोक हर्षित था नहीं, जब तक वृत्रासुर जी रहा था तब तक तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी भयभीत थे, किधर से आकर के 10-20 लाख को पकड़ कर खा जाएगा कोई पता नहीं। वृत्रासुर के लिए 10-20 लाख आदमी को खाना उनके लिए ब्रेकफास्ट था, वो पूरा लंच और डिनर नहीं था। तो तीनों लोक में लोग जहां तहां पर्वत में इधर उधर छिप करके हा नाथ हा विष्णु हे कृष्ण रक्ष पाहि पाहि रक्ष रक्ष यही कह रहे थे। लेकिन जब इंद्र हाथी पर चढ़े वृत्रासुर को मारने के लिए तो सुखदेव सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रैलोक्यम हर्षयन इव, तीनों लोगों को हर्षित करते हुए से एक बार हर्ष तो हुआ तीनों लोगों में कि इंद्र के हाथ में वज्र है और मारने जा रहे हैं, तो तीनों लोग हर्षित हुए लेकिन पूरा हर्षित नहीं हुए। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हर्षित नहीं हो सकते। सबको भय छा गया था, जब देवता लोग भाग चले थे उनका अस्त्र शस्त्र निकल गया था, तो दूसरे जीव किस खेत की मूली थे वृत्रासुर के लिए, थर थर कांप रहे थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था। यही था कि वृत्रासुर बिना मतलब के मारने नहीं जा रहे थे, वो भक्त थे, केवल हादसा इस तरह से विभीषिका हो गई थी, वो जैसे तैसे ऐसे नहीं मारा करते थे। देवता लोग उनको मारने के लिए दौड़े थे इसलिए खा गए थे अस्त्र शस्त्र, तो वे किसी को मारने नहीं गए थे। पर अब देवता लोग एकजुट होकर के वृत्रासुर का वध करने के लिए जा रहे हैं, और वृत्रासुर समस्त दानवों की सेना के साथ हो गए थे। इनका वर्णन आएगा, जितने भी श्रेष्ठ कोटि के असुर सेनापति थे सब वृत्रासुर के साथ हो गए थे। एक तो वृत्रासुर अकेले ही सर्वसमर्थ थे, किसी के सहाय की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सब जुट गए थे एक साथ। वृत्रम अभ्यद्रवत शत्रु असुरानी के युद्ध पै पर्यस्त मूर्छा राजन क्रुद्धो रुद्रयंत, तो समस्त देवताओं से युक्त होकर के वे बहुत सुंदर लग रहे थे और वृत्रासुर के प्रति चले। हाथी तेज गति से चला, देवता लोग भी बड़े वेग से चले वृत्रासुर का वध करने के लिए। वृत्रासुर कहां थे? असुरानिक युद्ध पर पर्यस्त, असुर सेनापतियों से युक्त थे वृत्रासुर। इसका अर्थ है कि उधर भी विशाल सेना जुटी हुई थी। यह नर्मदा नदी स्वर्ग में है, यहां जो नर्मदा जी है इनके तट पर युद्ध नहीं हुआ था, यह युद्ध स्वर्ग में हुआ था और प्रथम चतुर्युग में हुआ था। इस समय 28वां चतुर्युग चल रहा है, जो प्रथम चतुर्युग में युद्ध हुआ था उस समय, शायद प्रथम चतुर्युग में भी महाराज मनु के प्रथम चतुर्युग में हुआ था, हमको ठीक से धारणा नहीं कौन सा चतुर्युग था, इसमें वर्णन है। ततः सुराणाम असुरही रण परम दार रहा त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। प्रथमे युगे प्रथम चतुर्युग में युद्ध हुआ था त्रेता के प्रारंभ में, कहां पर? नर्मदाया स्वर्गीय नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। सुराणाम असुरेश देवताओं का युद्ध हुआ था, देवता युद्ध चालू किए थे, यह अर्थ है। देवता लोग लड़ने के लिए गए थे असुरेश, परम दारुण रण बहुत भयावह युद्ध हुआ जिसको सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय है, तो रण दारुण तो होता ही है, उसे मारने काटने के अलावा और क्या है, लेकिन यह जो युद्ध हुआ देवताओं का असुरों के साथ परम दारुण था, बहुत भयावह। विश्व के इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं और सदा से युद्ध रोकने की कोशिशें चलती रही है, परंतु फिर भी युद्ध हुए और बहुत सुसज्जित ढंग से धर्म युद्ध होते थे। देवताओं का युद्ध दानवों के साथ तो हमेशा चलता ही रहता है, परपेचुअल चलता रहता है। हम लोग पढ़ते हैं कैसे भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज, डच, जर्मन, फ्रांसीसी आया करते थे और यहां साम्राज्य स्थापित करने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। हम लोग बहुत बहुत युद्ध होता था और उसके पहले अनेक युद्ध लड़े गए हैं। अमृत पीते समय, अमृत पीने के बाद देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था जिसमें बलि महाराज मार दिए गए थे जान से। यह जो युद्ध है यह लगता है उससे पहले का युद्ध है। जो बलि महाराज का युद्ध हुआ था देवासु संग्रामों, तो इस मनोअंतर की कथा है। इतना इस मनोअंतर नहीं है, पंचमो रंग तो नाना। इस मनवंतर में तो भगवान ने बलि महाराज पर कृपा किया था। चक्षुष दस दर्जी संत पंचम मनवंतर में है, छठ मनवंतर में ध्यान नहीं आ रहा है। यह उसके पहले की घटना है। नर्मदा के तट पर बहुत भयावह युद्ध हुआ था, सारे असुर जुटे थे और सारे देवता यहां पर वर्णन कर रहे हैं कौन कौन लोग जुटे हुए थे। तो देवराज इंद्र के साथ सारे देवताओं की जाति बता रहे हैं। रुद्र वसुभिरादित्य अश्विभ्यम पितृवाहिनी भी मरुद्भि रेधिर साध्य विश्वदेव मरुत्पति दृष्टवा वज्र धर्म शक्र। असुरों ने देखा कि इंद्र के साथ कौन कौन है, तो समस्त रुद्रगण थे। रुद्रगण से तात्पर्य यह है कि भगवान शिव की जितनी भी सेना थी वे सब इंद्र के साथ, सारे रुद्र लोग थे, तो वही कई करोड़ करोड़ होंगे। सब भेजा था भगवान शिव ने, अथवा कम से कम 11 रुद्र और उनके अधीन रहने वाले भूत प्रेत आदि जो थे वो सब इंद्र का साथ दे रहे थे। और रिभु भी, रिभु नाम के देवता है जिनको भृगु जी ने उत्पन्न किया था, तो वे सब थे। रुद्र वसु भी और आठों वसु आदित्य माता आदिति के सभी पुत्र अश्विभ्याम दोनों अश्विनी कुमार समस्त पीतर समस्त अग्निदेव 49 मरु रिभु सात विश्वदेवा इन सबके साथ मरुत्पति थे। इंद्र को मरुत्पति कहा जाता है, मरुत गणों के नायक। इनको इस रूप में जब देखा असुरों ने, ऐसा साहस इंद्र का, इंद्र बीच में थे और चारों तरफ बहुत दूर में समस्त देवता थे, इसको देख करके असुर सह नहीं सके। इंद्र का यह साहस देख करके असुर सह नहीं सके। असुरों का उत्साह बढ़ा था क्योंकि वृत्र पूरा सरा, असुरों के सेनापति वृत्रासुर थे। वे अकेले ही बहुत समर्थ थे, इसीलिए वे लोग तो देवताओं को कुछ गिन ही नहीं रहे थे। लेकिन जब देखा उन्होंने देवराज इंद्र का एक शाल इतनी बढ़ी हुई है, तो वे लोग सह नहीं सके और तुरंत तैयार होकर के और इंद्र की सेना के आगे सब जगह फैल करके और रोके, कहां आ रहे हैं, इस तरह से कह कर सिंह नाद कर रहे थे। सिंह जैसे दहाड़ते हैं वैसे दहाड़ने लगे, आओ आओ हम अभी बता देते हैं तुमको, सज करके। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इंद्र इस समय काल से भी लड़ करके मार सकते हैं, समर्थ। काल भी इंद्र को हरा नहीं सकता था, भगवान डायरेक्ट कहे थे युद्ध करने के लिए। इस बात का पता नहीं था असुरों को। तो असुरों के साथ कौन कौन थे, श्री सुखदेव गोस्वामी अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देवताओं में किसी का नाम नहीं रखे इंद्र के अलावा, उनके जातिवाचक नाम रखे, ऋभु वसु रुद्र विश्वदेवा साध्य या आदित्य आदि, लेकिन असुरों के नाम रख रहे हैं जो सबसे बड़े बड़े शक्तिशाली सेनापति थे, उनके नाम रख रहे हैं।
नमुचिः शम्बरो नरवा दुर्धा ऋषभम्बर हयग्रीवः शंकुशिरा विप्र चित्तीरमुख।
एक बार एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी असुरों का नाम जप कर रहे हैं और देवताओं का नाम नहीं लिए क्यों,
और जातिवाचक केवल शब्द दिए और असुरों का नाम ले रहे हैं। नमुचि,
समुद्र मंथन जब हुआ था अमृत प्राप्ति के लिए, उस समय देवराज इंद्र ने नमुचि का वध किया बाद में, तो यह नमुचि था। इसके विषय में एक टीकाकार कहते हैं, नीची का अर्थ होता है छोड़ना, जिसको पकड़ लेता था उसको छोड़ नहीं पाता था, इससे मुक्त होना कठिन था, इसलिए उसका नाम था नमुचि। जिसको पकड़ लेता था फिर उसका मोचन नहीं हो पाता था, वो मार ही देता था। नमुचि,
नमुचि
संदर, संदरा से इसका वध बहुत बाद में द्वापर के अंत में प्रद्युम्न जी ने किया, द्वारका से उनका हरण करके ले गया, जिस दिन जन्म हुआ था उसी समय हरण करके ले गया संबरासी। तो कितना दिन जीवित रहा है, कितना बड़ा, कितनी बड़ी जिंदगी रही इसकी, बहुत दीर्घजीवी है, बहुत बलवान। अनरवा एक असुर सेनापति का नाम, दुर्मुर्धा ये बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, वैदिक इतिहास में। ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिर, विप्रचित्ति, अयोमुख, ऐसा असुर सेनापतियों के नाम है। प्रलोमा, पुलोमा, पुलोमा एक असुर का, इसकी पुत्री से इंद्र का विवाह हुआ है। कभी कभी असुरों के यहां दैत्यों में भी बहुत सुंदरी कन्याएं होती थी, बहुत सुंदरी, और उनका विवाह देवताओं से होता था। आपने सुना कि त्वष्टा जी का विवाह दैत्य कुल की कन्या रचना से हुआ था, और इंद्र का विवाह पुलोमा की पुत्री सची से हुआ है। ऐसे शारीरिक संबंध भी था, वैवाहिक संबंध था, लेकिन जब झगड़ा हो गया तो हो गया कोई इस पक्ष में कोई इस पक्ष में ऐसे चल रहा था, दैत्यों से देवताओं का कला था, इसलिए पुलोमा इसी पक्ष में। पुलोमा विश्वर्मा, विश्वर्मा विश्वर्मा जो शर्मिष्ठा के पिता है, नवम स्कंध में कथा है। प्रहेति, हेति उत्कल चाहे उत्कट, प्रहेति हेति उत्कल, और फिर जातिवाचक नाम दे रहे हैं। दैतेया, दानवा, जक्षा, रक्षांसी, सहस्र सब, और हजारों हजारों अर्थात अनंत अनंत कोटि कोटि दैत्य, दानव, जक्ष, राक्षस, जिनमें मुख्य थे सुमाली और माली, ये दो मुख्य सेनापति थे सुमाली माली, और ये सब सोने का कवच पहने थे, सोने के रथ पर सवार थे, इनके वाहन घोड़े हाथी का भी श्रृंगार सोने से किया गया था, ये सब जूटे और जुट करके ललकारते हुए सिंहनाद करते हुए इंद्र के सेना के आगे आ गए लड़ने के लिए। इनके पास लड़ने के लिए इंद्र की सेना आई थी, लेकिन निकट देवता लोग आए तो ये लोग भी ललकार करके सामने खड़े हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं, मृत्यु रपी दुरासद, इंद्र की सेना इतनी बलवान थी, सेना इतनी बलवान थी दधीचि मुनि के आशीर्वाद से और भगवान के तेज से, इतनी बलवान थी कि मृत्यु भी उस सेना के सामने नहीं टिक सकता था। टिकने की बात क्या थी, महाकाल भी इंद्र के सामने नहीं आ सकता था, इतना तेज इंद्र का बढ़ा हुआ था। पर मूर्खों को पता नहीं था, ये तो पहली घटना समझ रहे थे, जैसे देवता पहले भाग गए थे आह बाप आह दादा कहते हुए बचाने के लिए, तो ये लोग यही याद करते थे कि देवता बड़े डरपोक है और ये हमारे सामने नहीं आएंगे। उन लोगों के मन में उत्साह था कि देवताओं की अच्छी पिटाई करेंगे और कुछ लोग जान से मार देंगे कि अब जीवन में लड़ने का कभी साहस नहीं करेंगे। देवताओं के मन में ये आ रहा था, क्योंकि इन मूर्खों को भगवान की महिमा का पता नहीं होता,
ये पता नहीं था कि इंद्र किसके चरण के आश्रित थे, भगवान के करकमल की छाया में थे इंद्र, इसलिए इंद्र के सामने मृत्यु रूप विराजमान, साक्षात काल भी इंद्र के निकट नहीं जा सकता था, ऐसी सेना थी वह भयावह। तो काल हो चाहे जमराज हो मृत्यु कोई भी हो, सभी तो भगवान के अधीन है ना। तो अब इंद्र वो इंद्र नहीं रह गए थे, शक्ति भगवान की आ जाती है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बिजली के तार को समझे कि यार ये क्या है, छोटा सा तार है, चाकू से काट दूंगा इसको, लेकिन उसमें जो करंट होता है तो अंगुली भर मोटा तार केवल तार मात्र नहीं, कितनी शक्ति होती है उसमें करंट होने पर। इंद्र वो साधारण देवता नहीं थे, भगवान की शक्ति में उतरी थी, इसलिए काल भी उनके सामने नहीं टिक सकता था, ये असुर क्या टिकेंगे। ये सुखदेव गोस्वामी अपना कमल दे रहे हैं इंद्र की शक्ति, ये सब लोग जूते खड़े हो गए। अभ्यर्द संभ्रांता सिंह नादेन दुर्मदा, सब दुर्मद से रण के लिए मतवाला थे, सिंह नाद करने लगे असंभ्रांता, और कोई भी कभी सपने में भी भय नहीं कर रहा था इंद्र से या देवताओं से कि हमारा कुछ कर लेंगे, भाई भय नहीं था। तो एकाएक सब लोगों ने कहा, सब लोग एक साथ देवताओं पर प्रहार करो, गदाओं से, परिघों से, बाणों से, प्रास, मुदगर, तोमर, सूल, परास्वद, खडग, तलवार, सतघ्नि, भुसुंडी। सतघ्नि एक ऐसा अस्त्र है जिसमें लोहे के कांटे लगे होते हैं, कीले बहुत मजबूत, और एक बार मारा जाता है तो वह बार कम से कम 100 आदमी को मारता है, इसीलिए उसको सतघ्नि कहते हैं। और शत का अर्थ कहेंगे 1000 भी होता है, अनंत भी होता है। असुरों के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे सब बारी बारी चला दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वतो अवाकिरण शस्त्र अस्त्र दुर्धर्षदा, सब तरह से देवताओं के ऊपर अस्त्रों की शस्त्रों की बौछार करने लगे, वर्षा करने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक भी अस्त्र देवताओं के शरीर के पास नहीं पहुंच रहा। देखिए भगवान के अद्भुत की बात, जैसे प्रहलाद महाराज पर हिरण्यकश्यपु के द्वारा अनेक अस्त्र मारे गए असुरों के द्वारा, लेकिन प्रहलाद महाराज के शरीर में शक नहीं पाते थे, तो देवताओं पर कोटि कोटि अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे, वर्षा हो रही थी बहुत वेग से, लेकिन देवताओं के पास वे अस्त्र पहुंचे ही नहीं। नते दृश्यंत संचलना सर जाले समन्तत पुंखान पुंख पत्ते ज्योतिषीव नभो घनश, अस्त्र छोड़े जा रहे हैं, शस्त्र छोड़े जा रहे हैं। अस्त्र का अर्थ होता है जिसको दूर से मारा जाए, जैसे बाण चलाकर, और शस्त्र कहते हैं जिसको हाथ में ले करके मारा जाए, जैसे तलवार, जो शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र का अर्थ है जिसको फेंक करके दूर से मारा जाता, तो अस्त्र शस्त्र सब फेंक रहे थे, मार रहे थे, चारों तरफ से वर्षा हो रही थी, और इतनी बाणों की, और ऊपर जो लिखे गए सूल, परस्वद, सतघ्नि, भुसुंडी, प्रास, मुदगर, परिघ आदि की वर्षा हो रही थी, ऐसा लगा जैसे सूर्य पर या चंद्रमा पर बादल छा गए हैं, इस तरह से चारों तरफ से वर्षा हो रही थी, और एक भी देवता दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सब ढक गए। समन्वित चारों तरफ से बाण वर्षा, चारों तरफ से बाण वर्षा, न तो अदृश्यंत संछन्न, संछन्न सम्यक छन्न हो गए, इतने बार बरसाए जा रहे थे और नाना अस्त्र शस्त्र की देवता एक भी नहीं दिखाई दे रहे थे, सब जगह छा गए। तो प्रश्न होता है कि जो इतने वेग से जा रहे थे अस्त्र, तो देवताओं के पास नहीं पहुंचे क्या? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते पुंखा में पुंख पतित है, उनके मूल प्रदेश बाणों के अस्त्रों के मूल्य और अगले छोर सभी जा रहे थे, देवताओं पर गिर रहे थे, लेकिन इस तरह से देवता लोग आच्छादित हो रहे थे जैसे सूर्य और चंद्रमा बादलों से ढक जाते हैं। आकाश में कभी कभी बादल छा जाते हैं, आपने देखा होगा, खास करके रात्रि के समय बादल छा जाते हैं तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ते हैं और कोई तारा नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बादल जो है वो चंद्रमा आदि को छू लिए हैं, नहीं, तारे बहुत दूर रहते हैं, चंद्रमा बहुत दूर रहते हैं। तो इस तरह से असुरों के अस्त्र शस्त्र देवताओं से बहुत दूर रह गए, उनमें शक्ति नहीं थी कि वो निकट जा सके। और नीचे वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न ते शस्त्रार्थ वर्षौ घाह्या से दुहसे सैनिका, ये अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का समूह देवताओं के पास सुर सैनिका न आसेद, उनके निकट नहीं जा सकते। जैसे आकाश में बादल छाते हैं तो चंद्रमा के निकट नहीं चले जाते हैं, ताराओं के निकट नहीं चले जाते हैं। इस तरह से जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए गए कोई भी देवताओं के शरीर में टच नहीं किए, दूर ही रुक गए। भगवान की व्यवस्था थी, अद्भुत व्यवस्था है भगवान की, भगवान का तेज बहुत जोर से चला हुआ बाढ़ जाकर रुक गया, रुक जाता लगते नहीं थे। जब तलवार कोई मार रहा था वो रुक रहा था, हाथ में पकड़े पकड़े लग ही नहीं रहा था। जिस पर भगवान की कृपा होती है वास्तव में उसको कोई नहीं मार सकता, सारे अस्त्र शस्त्र लोग चलाए। अथवा छिन्नास्त्र शस्त्र उठा, जब देवताओं के जब असुरों के सारे अस्त्र शस्त्र छीन हो गए कट गए। अच्छा, तो पहले तो देवताओं की सेना नहीं दिखाई दे रही थी तो उपमा दिए कि बादलों से ढके हुए ताराओं की तरह चंद्रमा की तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ कि देवताओं ने उनके अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया। देवताओं ने सिद्ध पथ में अर्थात आकाश में इनके अस्त्रों को काट दिया अपने अपने अस्त्रों से। यहां श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अथ छिन्नास्त्र शस्त्र उघा गिरिश्रृंग द्रुमोपलय अभ्यवर्षण शुल्कलम चिक्षुस्ता से पूर्व छिन्ना सिद्ध पथे देवा लघु हस्त सहस्त्र। देवताओं असुरों के कोई भी अस्त्र देवताओं के निकट नहीं पहुंच सके, इसका कारण क्या था? एक तो भगवान की दया थी और दूसरा कारण यह था कि देवताओं में भगवान की कृपा से इतनी फूर्ति आ गई थी। लघु हस्त, लघु हस्त का छोटा हाथ नहीं होगा, लघु मतलब हस्त लाभ हो, हाथों की फूर्ति इतनी थी कि देवता लोग आकाश में ही इनके सारे अस्त्र शस्त्रों को सहस्त्र धा काट दिए, हजारों हजारों टुकड़े कर दिए, एक एक अस्त्र के हजारों हजार टुकड़े करके फेंक दिए। ये देवताओं में शक्ति आ गई थी। सिद्ध पथ, आकाश को सिद्ध पथ कहा गया है, सिद्ध लोग आकाश में चलते हैं। अब तो मनुष्य भी वायुयान में चलता है अब तो, लेकिन पहले सिद्ध लोग चलते हैं बिना वायुयान के, आकाश में घूमते रहते हैं। इसलिए आकाश को सिद्धों का पथ कहा गया, सिद्ध पथ। तो सिद्ध पथ में आकाश में देवता लोग असुरों के अस्त्र शस्त्र को हजारों टुकड़े करके फेंक दिए, काट दिए। अथ छिन्नास्त्र शस्त्र शस्त्र उगा, जब दैत्यों के सारे अस्त्र शस्त्र कट गए, एक भी समान नहीं रहा, तब वो पर्वत शिखर को उखाड़ करके या बड़े बड़े चट्टान को और वृक्षों को लगे देवताओं पर फेंक दिए। अब अस्त्र तो रहा नहीं, सारे अस्त्र शस्त्र देवताओं ने काट दिया और देवताओं के शरीर में कहीं किसी के भी शरीर में एक खरोच भी नहीं आया और इनके तो सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हुए। तो जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो पर्वत शिखर उठाकर के फेंकने लगे, बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर फेंकने लगे। और जब किसी के पास अस्त्र नहीं रहा तो अब पास में जो ढेला बचा है चाहे पत्थर है तो उन में तो बहुत शक्ति थी, पर्वत शिखर उठा उठाकर फेंकने लगे। हमने देखा है पर्वत शिखर माउंटेन के ऊपर जो चोटी होती है उसको उठा उठाकर एक एक आदमी उठाकर ऐसे फेंक रहा, इतना बल था ये लोगों। रावण तो कैलाश पर्वत उठा लिया था, शिव जी ऊपर शोभा दे रहे थे पार्वती जी के साथ, उठा करके लेकर के चला भगवान शिव, पर्वत उठा लिया, हनुमान जी पर्वत उठा लिया। तो ये लोग युद्ध में क्रोध में पर्वत का शिखर तोड़ तोड़ कर उठा करके फेंकने लगे। पहले तो पर्वत शिखर फेंके, पर्वत शिखर भी खत्म हो गए, छोटे छोटे चट्टान बची ऊपर तो उसको लेकर के फेंकने लगे, वो भी खत्म हुए तो वृक्ष उखाड़ करके फेंकने लगे। अथवा एक ही समय में कोई वृक्ष उखाड़ रहा था, कोई बड़ा बड़ा चट्टान उखाड़ कर फेंकने लगा, कोई पर्वत शिखर फेंकने लगा, लेकिन भगवान की कृपा से देवता लोग सब चूर चूर्ण कर दे रहे थे, धूल धूल कर रहे थे, इतना फुर्तीले हो गए थे भगवान की कृपा से। पूर्व बल अभिवर्षण सुर बलम, देवताओं के ऊपर, देवताओं की सेना के ऊपर वर्षा कर रहे थे, लेकिन देवता लोग पूर्ववत चित छिदे, हजारों हजारों टुकड़ा कर दिए सब। देवताओं पर एक ढेला नहीं लगा उनका, और पर्वत शिखर क्या लगेगा। जब इस तरह से दैत्यों ने देखा, तान क्षतान स्वस्ति मत निशान्य शस्त्रास्त्र पूगे रथ वृत्रनाथा द्रुमहे दृशद्भिः विविधा दृश्रृंगै आवेक्षतांस्तत्र श्रीन्द्र सैनिकान्। दैत्यों ने देखा कि इन लोगों ने अस्त्र शस्त्रों की इतनी वर्षा की, लेकिन इंद्र के जितने भी सैनिक है देवता वे सब अक्षता छत शून्य, मरने की बात तो दूर रही, किसी के शरीर में कहीं कोई छत नहीं हुआ। छत का अर्थ होता है चमड़ा छिल जाए, रक्त आने लगे, रक्त न भी आवे लेकिन छिल जाता है ऊपर प्लास्टिक जैसा, तो उसको छत कहते हैं, जैसे नखक छत, नख का आघात हो जाता है। तो दैत्यों ने ध्यान से देखा कि बाप रे बाप, हमारे तो सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए और इन लोगों में से किसी के शरीर में कहीं खरोच भी नहीं लगा। और इसके बाद ये तो पहले देख रहे थे, और बाद में देखे कि हम लोग इतना चट्टान पटके, पर्वत शिखर पटके, वृक्ष पटके, लेकिन अवृक्षता कहीं कोई खरोच नहीं, और उल्टे स्वस्थ ही, मतलब देवता सब सुखी न सुखी है, ये हंस रहे हैं, आनंद में है युद्ध में। यह देख करके अब तो तत्र शुरू बहुत भयभीत हो गए। अभी देवता लोग इन लोगों को मारे नहीं थे, अभी तो इनका केवल प्रतिकार किए थे, इनके अस्त्र शस्त्र को काटे थे, पर्वत शिखर चट्टान और वृक्षों को काटे थे केवल, लेकिन दैत्य समझ गए कि हाय रे अब तो मारना चालू करेंगे। इन लोगों को पास में कोई पर्वत और ऐसे वृक्ष अब नहीं मिल गया था, सब झाड़ उखाड़ घर के खत्म कर दिए दैत्य लोग। युद्ध में ये नहीं करना चाहिए कि बगीचा भी खत्म कर दे या करे और घर उखाड़ उखाड़ करके लड़ने लगे। हमने सुना है कि बड़े बड़े लोग कभी कभी कुर्सी से लड़ने लगते हैं, हर चीज नहीं मिलता है तो जिस कुर्सी पर बैठे रहते हैं उसी कुर्सी को लेकर के लड़ने लगते हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सभाओं में लड़ते हुए देखे गए, और आज का तमाशा उसको टीवी पर दिखाते हैं कि देखिए कैसे लड़ रहे हैं, अजीब सेंस है। इस दृश्य को दिखाने की क्या आवश्यकता है। दैत्यों ने देखा, ताम अक्षताम, देवताओं को कैसे देखा, इंद्र सैनिकों को अक्षताम, कहीं खरोच नहीं लगा, उल्टे स्वस्ति मत, सब कुशली है, स्वस्थ है, हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आह बाप आह गदर करे, देवता लोग ऐसे नहीं थे, बिल्कुल हंस रहे थे, आनंद में थे भगवान की कृपा से। निशान्य शस्त्रास्त्र कूगे रथ वृत्रनाथ, वृत्रासुर उनकी रक्षा करने वाले थे, वृत्रासुर प्रधान थे। जाइए देखा, द्रुमय दृशद भीर विविधात्र सिंह में, और वृक्षों से मारे और दृशद भी पत्थरों से ढोका से और पर्वत शिखरों से, फिर भी अविक्षता, कोई भी कहीं खरोच नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, किसी के हाथ पर भी लगा होता और देवता अगर यह कहते आया आया, 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 आया। लग गया, ऐसा कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। और यह भी नहीं कह रहे थे देवता हाय हाय अब क्या करें, आनंद में थे। जब यह देखा दैत्य ने तो ये लोग तत्रसु बहुत संतुष्ट हो गए, डर गए कि हाय बाप ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब तो हमें मरना पड़ेगा। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा कृता कृता देव गणेश दैत्य। श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने जो जो प्रयास किया भक्तों को मारने के लिए वो सारे प्रयास विफल हो। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, विमोघा का अर्थ निरर्थक। वो जो भी चट्टान उखाड़ रहे थे, वृक्ष डाल रहे थे, वो सारे निरर्थक हो गए, सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा, मोह का अर्थ है व्यर्थ और विमोह का अर्थ विशेषतः निरर्थक, विशेष रूप से सब निरर्थक। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वास्तव में उसे कोई नहीं मार सकता है। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। संसार में सबसे बलवान लोग भक्तों को मारने जा रहे हैं देवताओं को लेकर, कुछ भी नहीं हुआ और इनके सारे अस्त्र शस्त्र बर्बाद हो गए। सर्वे प्रयासा अभवन विनोगा कृता कृता देव गणेश दैत्य, दैत्यों के द्वारा कृता कृता का तो पुनः पुनः कृता, ये बारंबार हजारों बार प्रयास किए मारने का देवताओं को लेकिन सर्वे प्रयासा विमोघा अभवन, सारे प्रयास विशेष रूप से अमोघ हो गए। कृष्णानुकूल सु क्यों अमोघ हो गए, क्योंकि देव गणेशु का विशेषण है कृष्णानुकूल सु, कृष्ण अनुकूल जैसा तेसु, कृष्ण अनुकूल थे, कृष्ण फेवर में थे देवताओं के, इसलिए दैत्यों के सारे प्रयास विफल। एक भी काम नहीं किया, देखते थे कि ये अक्षत है कोई घाव नहीं लगा है तो कहते अभी दौड़े दौड़े वो पहाड़ बचा हुआ है उसको पटको ये लाओ, लेकिन सर्वे प्रयास अभिमन विमो सब कुछ विमो है। कृष्णानुकूल है भगवान जिसके अनुकूल है उन देवताओं का क्या कोई बिगाड़ सकता है, तो उस तरह से देवताओं पर कोई असर नहीं हुआ असुरों के मार का। जैसे श्रेष्ठ वैष्णवों के संतों के ऊपर दुष्टों की गाली का और कठोर बचने का कोई असर नहीं होता, खलके बचन संत सहज जैसे कभी कभी ऐसा होता है कोई संत है और दुष्ट लोग बहुत गाली देते हैं, ओ घर में खाने को नहीं मिला तो साधु बन गया पखंडी कहीं के, हरे कृष्ण कर रहा है, कई कई बार ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविक संत होगा तो वो डिगेगा नहीं, बोलने वाले बोलते रहते। जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ा है, यदि सैकड़ों कूदते आकर नीचे से भों 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 करे तो उसको कोई बेचैनी नहीं होगी कि अरे हमको काट लेंगे हमको खा जाएंगे, उसको कोई बेचैनी नहीं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रहता है तो कोई गाली दे आलोचना करे निंदा करे इसका उसको कोई असर नहीं। प्रभावित वही व्यक्ति होता है जिसका मन कृष्ण में नहीं होता, वो प्रभावित होता है। एक गाली दीजिए तो फिर वह भी कम से कम एक दो गाली तो देगा ही। कभी 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 कहते हैं अब हमको भी बोलना पड़ेगा, अब हमको भी बोलना पड़ेगा, इतना बोल रहा है क्या मैं चुपचाप रहूं क्या हो जाएगा। गाली सहना चाहिए, आलोचना सहना चाहिए। तो महत्स क्षुद्र प्रयुक्त रुषति रुक्ष वाच, रुषति का अर्थ होता है गाल और कल्याण्य वचन। कुछ दुष्टों के क्षुद्र शब्द दिया गया, क्षुद्र का अर्थ होता है नीच, जो पढ़े लिखे नहीं अनकल्चर्ड व्यक्ति बस गाली देकर के ही बोलना जानते, साधु हो चाहे कुछ भी हो बस गाली, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है कि इस तरह किस व्यक्ति से क्या बोलना चाहिए, तो वे लोग अकल्याणीय वचन बोलते हैं। रुषति का अर्थ होता है गाली सीधा, बहुत अभद्र और रुक्ष का अर्थ होता है रुखा सुखा वचन, कठोर बोलना और गाली देना। महत्सु जैसे महत् पुरुषों पर किसी के गाली का कोई असर नहीं होता है, उसी तरह से देवताओं के ऊपर असुरों के प्रहारों का कोई असर नहीं, सब सुरक्षित। अब जब देख लिए पूरा पूरा कि हजारों बार किया गया प्रयास सब व्यर्थ हो गया, तब ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए भागने का मन में सोच लिए। अभी देवता लोग मार नहीं रहे थे, अभी तो बेचारे अपने केवल प्रतिकार कर रहे थे इनके प्रहार का। तेषो प्रयासम वितथम निरीक्षा हराव भक्ता हत युद्ध गर्भ पलायन याज मुखे विसृज्य पति मनस्ते दधुरात सार। वे असुरगण जब देखे कि उनका सारा प्रयास विफल हो गया, निरीक्षण देखे बहुत ध्यान से देखे कि हमारा तो सारा प्रयास विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? ये तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इतने बलवान थे, क्यों विफल हो गया? श्री सुखदेव स्वामी कहते थे कि हरौ अभक्ता, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं थे, ये कही कारण है। और देवता भगवान के भक्त हैं, ये कही कारण है कि वो विजयी हो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि दैत्यों से ज्यादा अस्त्र शस्त्र उनको था, अथवा ज्यादा धन था, ज्यादा पढ़े लिखे थे, चतुर थे, बलवान थे, नहीं। एक ही विशेषता देवताओं की है कि वे भगवान के भक्त हैं बस। और दैत्यों का ये कहीं सबसे अवगुण है, सब कुछ है उनके पास लेकिन भगवान विष्णु के भक्त नहीं। हरम अभक्ता, इसलिए हत युद्ध दर्प, युद्ध में जो उनका दर्प था वो हत हो गया। हतो युद्धे दर्पो जो शांत, अब तक लाखों युद्ध किए थे, देवताओं को हमेशा ये लोग जीते थे, लेकिन इस बार के युद्ध में अब युद्ध करने का अभिमान इनका सदा के लिए चला गया। हत युद्ध दर्पा पलाय नायल मनह दधु, अब मन में सोच लिए कि अब जान बचाना है तो भागो। ये कभी युद्ध में नहीं भागे थे, हमेशा तो विजयी हुए थे, अब युद्ध से पलाय नायल, और वो भी आजी मुखे, आजी का अर्थ है युद्ध और मुखे का अर्थ प्रारंभ, युद्ध के प्रारंभ में ही भागने की सोचने लगे। मन में सोच लिए तो इस पर एक प्रश्न होता है कि वृत्रासुर जी तो लड़ रहे होंगे ना, वृत्रासुर अभी प्रहार नहीं किए थे, वृत्रासुर रुके हुए थे, केवल ये लोग कर रहे थे प्रहार। तो ये प्रश्न होता है कि आप वृत्रासुर को छोड़ करके लोग भागना चाहते थे? सुखदेव जी कहते हाँ प्रतिम विसृज्य, और ये चिंता नहीं थी कि वृत्रासुर कहा है क्या है, उनको छोड़ करके भागने के लिए तैयार थे, मन में संकल्प करेंगे भागने के लिए। असुर सेनापति लोग और जो दूसरे लोग थे छोटे छोटे सैनिकों तो भाग चले, भागने की सोचने लगे। वृत्रो असुरांस्तान अनुगाम मनस्वी प्रधावत प्रक्ष बधा सहित पलायितम प्रक्ष बलम च भग्नम भय न तीव्र न बिहस्य वीरम। वृत्रासुर जी देखे कि दैत्यों की सेना बुरी तरह से पराजित हुई है और अब ये सब युद्ध से भाग रहे हैं, तो देखे तो उनको हंसी आने लगी, थोड़ा हंस के लिखा गया। देखिए वृत्रासुर के पास सारी सेना इनकी अब भागने के मूड में, भाग चलू प्रभावत का अर्थ प्रकृषेण धावत, अब बुला रहे चलो रे चलो रे भागो, अब जान नहीं बचेगी, जो भी है भाग चलो भाग चलो भाग चलो, ये सब कहने लगे और भागने के लिए तैयार हुए। उस समय या भागने लगे तो वृत्रासुर को हंसी आने लगी, क्यों भाग रहे थे? भयेन तीव्रेण, तीव्र भय से भाग रहे थे, बहुत बड़ा भय छा गया कि अब मर जाएंगे मर जाएंगे। तो युद्ध में आए हो तो मरने से क्या डरना है, लेकिन तीव्रेण भयेन, तो वृत्रासुर को हंसी आ रही थी। उन्होंने देखा कि असुर सेनापति भी भागने लगे और पलायितम भग्न बलम विलोक्य, और सेना तो पहले से ही भग्न हो चुकी थी और भाग रही थी, सेनापति भी भाग रहे थे तब वृत्रासुर इस तरह से कहने लगे। वृत्रासुर के वचन का गुण बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, कालोपपन्नं रुचिरं मनस्विनं वाचवाचं पुरुष प्रवीरः। समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ वृत्रासुर इस प्रकार का वचन बोल रहे थे। कैसा? कालोपपन्न, काल का अर्थ अवसर और उत्पन्न का अर्थ रुचि, अवसरोचित वचन, किस स्थान पर किस समय क्या बोलना चाहिए उस अवसर के अनुकूल वचन था उनका, वृत्रासुर का बिल्कुल युक्त वचन बोल रहे थे। और मनस्विना रुचिरा, जो धैर्यवान होते हैं युद्ध में धैर्य रखते हैं उनके लिए बहुत सुंदर वचन बोल रहे थे। पुरुष प्रवीर, श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े आदर के साथ वृत्रासुर का वर्णन करें, पुरुष प्रवीर, पुरुषों में प्रकृष्ट वीर। वृत्रासुर बोलने लगे, सबसे पहले वे सेनापतियों के नाम लेकर के पुकारने लगे, हे विप्रचित्ते मनुचे कुलोबल मया होगा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। और सेनापतियों के नाम रख रहे हैं, क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? पहले तो उन्होंने पूछा, अरे क्यों भाग रहे हो? तो लोग कहने लगे, मरे के भय से भाग रहे हैं, या क्या करें, अब मरने तो शेष है, हम मरना नहीं चाहते हैं। तब वे कहते हैं, सुनो 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 सुनो, जातस्य मृत्यु ध्रुवेश सर्वतः प्रतिक्रिया जनचय क्लिप्ता। सुनो देखो, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, शरीर ग्रहण किया है, उसको एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है निश्चित है शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां इस समय हम नहीं छोड़ना चाहते। कहा जा रहे तो कहीं जाकर के भाग करके मृत्यु से बचेंगे। तब वृत्रासुर जी कहते हैं, सर्वतः कहां भाग कर जाओगे, सर्वत्र मृत्यु है, मृत्यु की प्रतिक्रिया विधाता ने बनाया नहीं है, और सब चीज की प्रतिक्रिया है। इस संसार में हम लोग देखते हैं शीत की प्रतिक्रिया है, ठंडा के दिन में हम लोग हीटर जलाते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो जाड़ा को टालने की प्रतिक्रिया है, उपाय है ना, ठंडा से बचने का उपाय है, गर्मी से बचने का भी उपाय है। हम कूलर चलाते हैं, ठंडा पानी पसंद करते हैं गर्मी के दिन में, बुढ़ापा तक से मुक्त होने की प्रतिक्रिया है, कायाकल्प करा लेते हैं, क्या क्या करते हैं, बुढ़ापा तक से आदमी बच जाता है, लेकिन मरण से कोई नहीं बच सकता, और सब चीज की प्रतिक्रिया है। लेकिन रोग आदि की प्रतिक्रिया है, बुखार आता है दवा लीजिए ठीक हो जाए, अस्पताल में जाकर के लड़ करके दवाई दवाई के साथ रोग से लड़ करके फिर आ जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आज तक होगा जो लड़ करके मृत्यु को हरा दिया, न हिरण्यकश्यपु जीत पाया, न कंस, दंतवत्र, रावण, जरासंध, कोई नहीं। और वर्तमान में गिनाइए तो ये बड़े बड़े नेपोलियन और जर्मनी में कौन हुआ था, हिटलर, हाँ ये कोई नेपोलियन, कोई कहता था कि डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल देना चाहिए, असंभव शब्द निकाल देना चाहिए और वही निकल कर चला, क्या उन्माद है। कोई कहीं बचा है, कहीं छिप करके बचेगा, कोई भारत से भाग करके अमेरिका में चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, भारत वर्ष में ही इधर उधर भाग करके जाए, लेकिन मृत्यु की सर्वत्र पहुंच है। वृत्रासुर जी कहते हैं, सर्वतः जातस्य मृत्यु ध्रुवेश सर्वतः, जन्मे हुए कि शरीर ग्रहण किए हुए कि मृत्यु, अर्थात शरीर का छूटना सर्वत्र ध्रुव निश्चित, कहां नहीं मरोगे, या भाग करके चले जाओगे तो कहीं बच जाओगे, सब जगह मृत्यु है। तो कहते मरेंगे, लेकिन कुछ दिन जी करके तो मरेंगे, तो वृत्रासन जी कहते हैं कि आखिर जब मरना ही है, निश्चित है मरना, तो जिस मृत्यु को मरने से लोको जसस च यदि उच्च लोक मिले, स्वर्ग मिले और इस पृथ्वी पर जस फैले, युद्ध में मरने का जस मिले और उस परलोक में स्वर्ग मिले, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी मृत्यु का वर्ण नहीं करेगा। आखिर जब मरना ही है तो ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए ना, लौटो लौटो यहां मरो, यहां मरो, यहां मरने पर स्वर्ग मिलेगा और इस लोक में कीर्ति मिलेगी, और यहां नहीं मरते हो जाकर कहीं हॉस्पिटल में मरोगे, अपने घर में मरोगे, तो एक तो कलंक लगेगा, अपकीर्ति होगी कि युद्ध छोड़ करके भाग गए, यह अपकीर्ति होगी और नरक निश्चित। लोक गया और जस भी गया, यहां मरने पर तो लोक भी मिलेगा और कीर्ति भी मिलेगी, इसलिए यही आओ मर, सब लोग यही लौटो लौटो लौटो। बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं, जातस्य मृत्यु ध्येयस्य सर्वतः, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित, तो योग्य मृत्यु मरनी चाहिए सबको। योग्य मृत्यु क्या है आगे बता रहे हैं, द्वंद सम्मता यह मृत्यु दुरापौ जगदम संधारया जितासु कलेवरम जो व्रतो विजया जगत रणी वीर सय निवृत्तम। ऐसे तो बहुत प्रकार से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। एक तो भगवान कृष्ण में मन लगा करके भक्ति जोन में स्थित होकर के शरीर छोड़ना, यह बहुत दुर्लभ है। और दूसरी दुर्लभ मृत्यु है युद्ध में पीठ न दिखा करके शत्रु का बाण सहते हुए मर जाना, ये दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ। तो पहले प्रकार की जो मृत्यु है तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, तुमको कहां ब्रह्म धारणा है, कहां भगवान की भक्ति, इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारे मन में आएंगे ये तो होगा नहीं। अब एक ही मृत्यु अच्छी है, मर सकते हो युद्ध में मरो, दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ। देखिए भक्त का प्रवचन, ये स्वयं मरने के लिए तैयार थे, उन लोगों को भी कहा था तुम लोग भी मरो, ये बहुत अच्छी मृत्यु है, ऐसी मृत्यु जल्दी नहीं मिलते, भाग्य से मिलती है। एक घटना हमको याद आ जाती है, अपने गांव के पास की घटना है कि एक व्यक्ति रिटायर होने वाला था रेलवे विभाग से, हमारे गांव का संबंधी था, तो रेलवे से रिटायर होने वाला था, तो उसने सोचा कि यदि मैं ड्यूटी के समय में मर जाता हूं रेलवे का काम करते हुए तो मेरे पुत्र को नौकरी मिल रही है, शायद नियम है सरकार का जो, तो उसने सोचा कि आज मुझे मरना है। तो लास्ट दिन ड्यूटी करने गया था, तो जानबूझ करके वो एक ट्रेन आ रही थी उसमें कट गया, देहरादून एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी कुद्रा वहीं पर कट गया, तो ट्रेन का ड्राइवर रोका ट्रेन और उसने कहा कि ये जानबूझ करके कटा है, लेकिन रेलवे के जितने कर्मचारी थे सब मिल गए, कहा नहीं 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 ये तो ड्यूटी में था, जान उसके तो नहीं काटा, तो उसके पुत्र को नौकरी मिली। ये युक्त मृत्यु है उसकी, ऐसी मृत्यु मरा कि उसके पुत्र को नौकरी मिली, एक लौकिक दृष्टि से अयुक्त मृत्यु है। नहीं तो ऐसे ड्यूटी के अलावा समय में मरा होता तब नौकरी नहीं मिली। तो मरने का कुछ काल होता है, देश होता है और कुछ मानसिक स्थिति होती है, उस योग्य मृत्यु में मरने पर व्यक्ति भगवान के पास जाता है या स्वर्ग प्राप्त करता है। लेकिन ये सब बहुत कठिन है, भगवान में मन लगाना भजन करना बहुत कठिन है, युद्ध में मर जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए भी दो गुण दे रहे हैं, अग्रणी और अनिवृत्त। अग्रणी का अर्थ है सीधा सामने रह, जो बोले भागे नहीं और सामने आघात सह लगा लगा और मर जाए, नहीं भागने लगा और पीछे से कोई मार दिया तो वो नरक में जाएगा। भय न करे, जो
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
योग रत, रत शब्द का अर्थ होता है आशक्त,
रात दिन रचे पचे रहना चाहिए भक्ति में, भागवत पढ़ने में, सुनने में, जप करने में, भगवान की पूजा में रक्त रहना चाहिए। रक्त उसको कहते हैं जिसको बाहर की शुद्धि नहीं है, लगा हुआ है उसी में उसकी रुचि है, तो योग रक्त है। तो योग रक्त होता है वह ब्रह्म को पकड़ लेता है, ब्रह्म संधारण मन में भगवान को पकड़ लेता है, उनके रूप गुण आदि की स्मरणा होती है, तो मन में भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, वाणी से नाम आदि का उच्चारण करते हुए, यदि कोई व्यक्ति कलेवरम जहिया शरीर छोड़ता है तो वह भगवान के पास जाता है। कहने का आशय यह था, वह बहुत दिव्य लोक प्राप्त करता है, वैकुंठ प्राप्त करता है, और युद्ध में पीठ न दिखा करके शत्रु का आघात सामने सह करके मरने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है। इतना सुंदर प्रवचन है, युद्ध में प्रवचन किया जा रहा है, क्योंकि एक महाभागवत व्यक्ति बोल रहा है। युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, भगवद गीता का उपदेश भी तो युद्ध में ही हुआ है ना, भगवान युद्ध में बोल रहे हैं, अभी युद्ध चालू होने वाला था उसी समय बोल रहे हैं। युद्ध में बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली जाती हैं, आगे भी जितने भी प्रसंग आएंगे वो युद्ध में बोले गए हैं। वृत्रासुर बोले हैं, भगवान इंद्र बोले हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर उद्गार है। मरना निश्चित ही है, कहीं कोई भाग करके बच नहीं सकता है, कहीं नहीं बच सकता है। इसके विषय में अनेक कथाएं कही गई है, कुछ लोग बचने का प्रयास किए लेकिन नहीं बच सके। जब मरना निश्चित ही है तो क्यों नहीं योग्य मृत्यु मरे, और योग्य मृत्यु सुलभ हो तो उसको छोड़ करके अयोग्य मृत्यु मरने के लिए नहीं तैयार होना चाहिए। योग्य मरण हो तो उसी समय मर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान का धाम मिलेगा। इसका अर्थ है कि जिस समय मन भगवान में लगा है, पूरा पूरा भक्ति योग में मन लगा है, तो भगवान से मनाना चाहिए कि हे भगवान, इसी समय हमारा शरीर छूटे और हम आपके सेवा में उपस्थित हो जाए। पता नहीं आगे क्या होगा, प्राण प्रयाण समय पखवात पीते प्राणावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते, फिर बाद में क्या होगा कोई ठीक नहीं। इसीलिए एक उक्ति है, श्री प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका से, एक साधु को एक व्यक्ति प्रणाम किया और वह ब्रह्मचारी था, भक्त था, तो उसको साधु ने आशीर्वाद दिया, ऋषि ने, एक साधु था भजन करने वाला ब्रह्मचारी था, तो उसको आशीर्वाद दिया, मां जीव ऋषि पुत्र, हे ऋषि पुत्र, हे भक्त, तुम मत जियो, आगे जियोगे तो विषय का आवेश हो जाएगा, संसार में फंस जाओगे, अगर इसी समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम निश्चित भगवान के पास जाओगे। ये आशीर्वाद दिए, और राजा के पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया, मां जीव राजपुत्र का, हे राजपुत, नहीं उसको क्या कहा, दूसरा कहा, व्याध को कहा कि मां जीव मां मर व्याध, हे व्याध, तुम जियो भी मत मरो भी मत, जियोगे तो तुम पक्षियों का वध करोगे और मरोगे तो नरक में जाओगे, इसलिए तुम जियो भी मत मरो भी मत, हे आशीर्वाद दिया। मां जीव मां मर व्याध, और जीव व मर साधु, एक साधु था, सफल जीवन था, बुढ़ा हो चला था, भगवान का भजन करता था, तो अब जीवित रहे चाहे मरे कोई अंतर नहीं, तो उसको उन्होंने कहा कि जीव व मर साधु, तुम चाहे जियो चाहे मरो, जो इच्छा करो करो, तुम्हारे ठीक है। व्याध को तो कहा जियो भी मत मरो भी मत, और राजपुत्र को क्या कहा, कुछ काम ये ध्यान नहीं आया, हाँ, राजपुत्र चिरम जीव, हे राजा के लड़के, तुम सदा जीवित रहो, मरो मत, क्योंकि मरते ही नरक में जाओगे, इसलिए आशीर्वाद दिए मरो मत, मरते ही जब राज के दूत मारते पीटते हुए नरक में ले जाएंगे, इसीलिए बेटर है मरो मत। इस तरह से मेरे आशीर्वाद दिया। तो वृत्रासुर जी बुला रहे हैं कि लौटो लौटो लौटो, जहां मरना ही है तो इससे सुंदर मृत्यु कहां मरे। ये तो निश्चित हो गया वृत्रासुर जी के अनुसार भी कि हम देवताओं से जीतना कठिन है, यहां मरना निश्चित। वो जानते थे कि भगवान का प्लान है और वज्र बनाया गया है तो भगवान की इच्छा से बनाया गया है, यहां मरना निश्चित, इसीलिए बुला रहे लौटो लौटो यही मरो, बहुत अच्छी भूमि है मरने की, जी कर क्या करोगे। लेकिन वे लोग इतना भयभीत हो गए थे, इतना भयभीत हो गए थे कि भाग ही गए, सुने नहीं वृत्रासुर जी का, भाग गए, इतना भय हो गया। तब वृत्रासुर देवताओं को डांट करके कहते हैं वे तो अपने पिता के माता के मूत्र हैं ही जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, तुम कौन अच्छे व्यक्ति हो कि भागने वाले पर प्रहार कर रहे हो, मुझ पर क्यों नहीं प्रहार करते हो, मैं खड़ा हूं ना। देवता लोग दौड़ करके और उनको पीटना चालू किए, वो लोग भाग रहे थे, युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना था, लेकिन देवता इतने क्रोध में आ गए थे उनके उत्पात से, ये लोग मारना चालू किए, तब वृत्रासुर जी देवताओं को गाली देना चालू किया, यही धर्म युद्ध कर रहे हो, भागने वाले पर प्रहार करते हो, यदि तुम लोग ये जानते हो कि युद्ध अच्छी चीज है और तुम लोगों के हृदय में यदि धैर्य है और यह भी तुम लोगों को यदि विश्वास है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो मेरे सामने रुक जाओ, अन्यथा जाओ भाग। तो भागने वाले देवता नहीं थे, वृत्रासुर निर्भय बोल रहे थे, इनको जीतना नहीं था, जानते थे कि मैं जीतूंगा नहीं, भगवान का प्लान था इंद्र को विजयी बनाना, ये जान गए थे। आगे इनके प्रवचन में बात आएगी, हम लोग आगे सुनेंगे किस तरह देवताओं के साथ इनका युद्ध हुआ और बाद में इंद्र के साथ, और परस्पर बहुत सुंदर कथोपकथन हो रहा है, युद्ध में बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई। वृत्रासुर की जो वीर वाणी है, वीर वाणी एक महान भक्त की वाणी, वो सदा अजर अमर रहेगी। आज भी भागवत पढ़ने वाले लोग जब वृत्रासुर जी की बात सुनते हैं चर्चा को कहते हैं अच्छा उनकी प्रार्थना जो उन्होंने युद्ध में किया था वो चार श्लोक प्रार्थना यही याद आया। हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो वसुदेव दास जी बैठे थे कार में, उन्होंने कहा कि महाराज क्या प्रसंग कहेंगे, तो मैं कहा कि वृत्रासुर जी का प्रसंग कहेंगे। अच्छा उन्होंने जो प्रार्थना किया था युद्ध में वो तो प्रार्थना वर्षों आएगी, लेकिन कल और उसके पहले जो उन्होंने कहा है वो आ जाएगा। प्रत्येक भक्त को बड़े ही सावधानी के साथ प्रेम से इस प्रसंग को सुनना चाहिए, बहुत सुंदर उद्गार है। हरे कृष्ण।